तारा परी और अमन तिलस्मी कड़े की किताब ढूंढने के लिए तहखाने में चले जाते हैं, जहां उन्हें कुछ देर बाद वो किताब मिल जाती है, जिसे छूकर अमन को एक जोरदार करंट लग जाता है। तब तारा परी अपने जादुई कड़े की मदद से वो किताब उठा लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लग जाती है। उसमें लिखा था, काली पहाड़ी को पार करके एक बड़े से झरने के नीचे एक बूढ़ी माँ पानी से सेक कर रोटियाँ बना रही होगी, और वो तिलिस्मी रोटी ही उस इंसान की जान बचा सकती है जिस पर तिलिस्मी कड़े का वार गलती से किया गया होगा। अमन तारा को वो किताब पढ़ता हुआ देखकर काफ़ी हैरान था। वो सोच रहा था कि जो भाषा उसने आज तक ना ही कहीं देखी या सुनी है, वो तारा को कैसे आती है। खैर, वो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तब करिश्मा जी उन्हें अपने पास रखी एक चीज़ के बारे में बताती है जो उस झरने तक जाने में उन दोनों की मदद कर सकती थी। तारा उस बंद पड़े संदूक को देखकर बोली, इस पर ये निशान कैसा है? उस पर एक हाथ के पंजे जैसा कुछ निशान था। करिश्मा जी ने कहा, ये निशान नहीं, इसका पासकोड है। ऐसा कहकर करिश्मा जी ने अपना दाहिना हाथ उस पंजे वाले निशान पर रख दिया, और देखते ही देखते उसके अंदर से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकलने लगी, और तभी एक झटके से उस संदूक का मुँह खुल गया, और उसके अंदर एक लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ एक आसमानी रंग का छाता रखा हुआ था। उसे देखकर अमन और तारापरी दोनों चौंक गए और सवालिया नज़रों से करिश्मा जी की तरफ देखने लगे। तब करिश्मा जी ने कहा, मैं जानती हूँ इसे देखकर तुम दोनों के मन में ढेर सारे सवाल पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूँ, ये एक जादुई छाता है जिसे तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था। एक बार मैं उनसे रूठकर उस बगीचे में बैठी थी, क्योंकि वे मुझे कहीं घुमाने नहीं लाते थे काली शक्तियों के डर से, और मुझे मनाने के लिए वे इस जादुई छाते को मेरे पास लाए, और जैसे ही हम दोनों ने इस छाते को पकड़ा, तभी इसमें से एक तेज़ रोशनी निकलने लगी, और देखते ही देखते ये छाता हमें नीले आसमान पर ले गया, और हम दोनों ने उस दिन पूरे आसमान की सैर की थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, उसे मैं आज तक नहीं भूली हूँ। अमन और तारा बड़े ही ध्यान से करिश्मा जी की बातें सुन रहे थे। तब अमन ने कहा, मॉम, तो मैं एक काम करता हूँ, इस छाते की सहायता से मैं उस काली पहाड़ी पर जाकर उस बूढ़ी माँ से वो रोटी ले आता हूँ। मिस तारा को मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ये बात सुनकर तारापरी गहरी नज़र से अमन को देखने लगी, और इससे पहले कि वो अमन को कुछ कहती, तभी करिश्मा जी बोल पड़ी, नहीं बेटा, इस छाते को लेकर तुम अकेले नहीं जा सकते हो, इसके लिए दो प्रेमियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि जिन दो लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात होंगे और उनमें से कोई एक किसी और के लिए नहीं सोचेगा, वही इस छाते द्वारा कहीं जा पाएगा। तारापरी ये सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, लेकिन उसके दिल में तो अमन के लिए कोई जज्बात ही नहीं है, और अगर उस छाते ने उसे ले जाने से मना कर दिया तो पक्का उसका सच इन लोगों को पता चल जाएगा। तब अमन ने कहा, ठीक है मॉम, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि जितना टाइम हम वेस्ट करेंगे उतना ही मान की जान को खतरा होगा। तब करिश्मा जी बोली, ठीक है बेटा, तुम दोनों मेरे साथ बंगले की छत पर चलो। और तब तारापरी ने सोचा, जब छाता मुझे ले जाने से मना कर देगा तब तो इन्हें सच पता ही चल जाएगा, सो इससे अच्छा है इन्हें खुद ही देखने दो, और जब कुछ पूछेंगे तब मैं इन्हें सच बता दूंगी। ऐसा सोचकर तारापरी भी अमन और करिश्मा जी के पीछे पीछे होली। करिश्मा जी उन दोनों को छत पर ले गईं और अमन से कहा, तुम इस छाते को खोलो। अमन ने जैसे ही छाता खोला, उसके ऊपर रंग बिरंगे फूल बरसने लगे। वो सब कुछ बेहद ही मनोहर, मन को मोह लेने वाला दृश्य लग रहा था। तारापरी भी उस दृश्य को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और बिना करिश्मा जी के बोले उस छाते के नीचे जाकर खड़ी हो गई, और जैसे ही तारापरी उस छाते के नीचे खड़ी हुई, उसी पल वो फूल बरसना अचानक बंद हो गए, और तभी अमन और करिश्मा जी तारापरी को गहरी गहरी नज़रों से देखने लगे। करिश्मा जी के मन में ढेर सारे सवाल पैदा हो चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो तारापरी से कुछ पूछती, ठीक उसी वक्त उन दोनों के ऊपर रंग बिरंगे फूलों की बरसात तारापरी के ऊपर भी होने लगी। तारापरी ये फूलों की बरसात देखकर खिल उठी, वहीं करिश्मा और अमन ने भी राहत की सांस ली। तभी करिश्मा जी आगे बढ़ी और उन्होंने उस छाते के बीचों बीच का एक बटन प्रेस किया, और देखते ही देखते तारापरी और अमन की कमर पर एक बेल्ट टाइप का कुछ आया, और वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। तारापरी की छाती अमन की छाती से जा टकराई। तब शर्म से तारापरी ने अपनी आंखें झुका ली, और देखते ही देखते वो छाता उड़ने लगा। अमन की नज़र उस वक्त उस उड़ते छाते पर नहीं बल्कि तारापरी पर थी, जो उसके बेहद करीब थी। अमन उसे इतना करीब पाकर अपने होश खो रहा था। वहीं तारापरी उस वक्त अमन को देखने के बजाय नीले गगन की खूबसूरती में खोई हुई थी। पहली बार वो अपने परों के बिना इस तरह से उड़ रही थी। सब कुछ बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। उस खूबसूरती में उसे एहसास ही नहीं था कि वो अमन सिंह राठौड़ के कितने करीब थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित मलिका के साथ जी भरकर सुख प्राप्त करने के बाद उसे छिपकली रज्जू का ख्याल आया, और वो मलिका को वहां छोड़कर रज्जू के पास चला आया। रज्जू उसे देखकर सब कुछ याद करने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने उस मालिक से कह दे कि वो उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो किसी वजह से कह नहीं पाई। तब अमित ने उस छिपकली यानी रज्जू से कहा, तुम अभी अमन के घर के लिए निकल जाओ, क्योंकि कल शाम को अमन और तारा की शादी है, सो मैं ये नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी देरी हो, इसलिए तुझे अभी उस ओर निकलना होगा। रज्जो अपने मालिक के द्वारा दिखाए गए विजुअल में ललचाई नजरों से अमन को देख रही थी। अमित ने जादुई शक्ति से अमन और तारा की फोटो उसके दिमाग में फिट कर दी थी। रज्जो का दिल एक बार फिर चाहा कि वो अमित को बता दे कि वो उसके साथ प्यार करना चाहती है, और वो कहने ही जा रही थी कि तभी मलिका, जो कि अमित के जाने के बाद अच्छी तरह से नहा धोकर एक बड़ी ही खूबसूरत लाल और काले रंग की साड़ी पहने हुए वहां आ गई थी, और अमित को देखकर उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और रज्जो को देखने लगी। मलिका को देखकर रज्जो ने अमित को कुछ भी कहने का इरादा छोड़ दिया, क्योंकि अमित की नजरें मलिका के ऊपर से हटी ही नहीं रही थी। वो पागलों की तरह उसे देख रहा था, क्योंकि वो चलती फिरती कयामत लग रही थी। तभी रज्जो ने कहा, ठीक है मालिक, अब आप मुझे इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए, मैं रज्जो कामयाब होकर ही लौटूंगी। रज्जो ने अमित को सलाम किया और प्यारी नजरों से एक बार अमित को देखती हुई वहां से निकल गई। वहीं अमित मलिका को घूर रहा था। एकदम काले और लाल रंग में मलिका की दिखती गोरी और जवान रंगत बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमित अभी तो उसके हुस्न में खो गया था, लेकिन उसे एक बार फिर ऐसी हालत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे एक बार फिर से उसी कमरे में ले गया। मलिका ने अपने हुस्न को अपना हथियार बनाने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उसका इरादा था कि अमित को अपने जाल में फंसाकर वो इस काली दुनिया की तमाम शक्तियों की मालकिन बन जाएगी, और फिर वो तिलिस्मी पत्थर और अमन और तमाम काली शक्तियां उसकी गुलाम होंगी। वो अमित को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर रखेगी, उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं देगी।
मल्लिका अपनी बिना मर्जी के अपने शरीर पर अमित को बर्दाश्त कर चुकी थी, और वो ये भी समझ चुकी थी कि अमित उसे कहीं नहीं जाने देगा। उसकी ये जिंदगी अमित की दी हुई थी। अगर उसे अमित से लड़ना था तो उसके लिए उसे और ताकतवर होना होगा, तभी वो अमित के साथ साथ पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चला सकती थी। वहीं दूसरी ओर रज्जो अमित के महल से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। वो उस वक्त वही खूबसूरत इंसानी रूप में थी। कितने सदियों के बाद वो कैद से आज़ाद हुई थी, इसलिए वो अपनी आज़ादी को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थी। और अभी वो आसपास के हरे भरे पेड़ और एकदम चिकनी सड़क देख ही रही थी कि तभी उसके सामने से लगातार दो तीन गाड़ियां गुजरीं, और वो हैरान रह गई, क्योंकि गाड़ी क्या होती है और वो सड़क पर कैसे दौड़ रही है, उसे इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। वो सोचने लगी कि शायद सभी इंसानों के पास कोई दौड़ने भागने की जादुई शक्ति आ गई है, जिसके वजह से वे सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ रहे थे। अभी मलिका ये सोचते हुए रोड के बीचों बीच चल ही रही थी कि तभी एक ब्लैक रंग की मर्सिडीज वहां आ गई, और उस गाड़ी के ड्राइवर की नज़र सड़क के बीचों चलती हुई खूबसूरत सी कन्या पर पड़ी। रज्जो का आधा शरीर उसके पहनी हुई साड़ी से दिखाई दे रहा था, और उसकी बड़ी सी चोटी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उस काले रंग की गाड़ी में तीन लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक विक्रम सिंह था, जो वहां के MLA का बेटा था, जिसने दो दिन पहले ही अपनी नौकरानी की बेटी को अपनी बुरी नीयत का शिकार बनाया था और फिर उसे जिंदा जला डाला था। और यूं आधी रात को इतनी खूबसूरत लड़की को सड़क पर देखकर उसका ईमान टगमगा गया, और उसने रज्जो के बेहद करीब ले जाकर गाड़ी रुकवा दी और ड्राइवर को इशारा किया कि वो हॉर्न बजाए, क्योंकि वो रज्जो का मुंह देखना चाहता था, क्योंकि उसकी केवल पीठ ही दिखाई दे रही थी। दोस्तों, प्लीज़ अपनी फेवरेट स्टोरी को पॉपुलर बनाइए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ तारा परी के इस एडवेंचर सफ़र में। गाइस, प्लीज़ लाइक्स कॉमेंट्स ज़रूर करें। आई एम वेटिंग।